एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार। तो आज हम 20वीं सदी के अमेरिकी साहित्य की एक ऐसी भूल भुलैया में उतरने जा रहे हैं जो जितनी विशाल है उतनी ही मजेदार भी
और उतनी ही जटिल भी।
हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं जॉन बार्थ के महाकाव्यात्मक उपन्यास द सॉट वीड फैक्टर की।
आपने भूल भुलैया शब्द का इस्तेमाल किया और मुझे लगता है इस उपन्यास के लिए इससे बेहतर कोई शब्द हो ही नहीं सकता।
क्यों?
क्योंकि ये कोई सीधी सपाट कहानी नहीं है, ये तो इतिहास, व्यंग्य, दर्शन और साहसिक कारनामों का एक ऐसा ताना बाना है जिसमें पाठक सच में खो जाता है।
बिल्कुल। और इसके लेखक जॉन बार्थ वो अमेरिकी पोस्ट मॉडर्निज्म के मतलब उत्तर आधुनिकतावाद के सबसे बड़े नामों में से एक थे। उनका अंदाज ही बहुत अलग था।
वो मेटाफिक्शन लिखते थे।
हाँ, मेटाफिक्शन मतलब ऐसी कहानियां जो खुद जानती हैं कि वे महज कहानियां हैं। जी
लेखक कहानी सुनाते सुनाते अचानक जैसे पाठक से बात करने लगता है या कहानी कहने की कला पर ही सवाल उठाने लगता है।
और द सॉटवीट फैक्टर जो 1960 में प्रकाशित हुआ वो इस शैली का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है।
मजेदार बात यह है कि बार्थ ने इसे 18वीं सदी के जो साहसिक उपन्यास होते थे ना,
पिकारेस्क।
हाँ बिल्कुल, उसी पिकारेस्क शैली में लिखा है।
और ये पिकारेस्क शैली समझना जरूरी है, इसमें नायक कोई महान योद्धा या राजा नहीं होता है ना?
नहीं, नायक एक आम, थोड़ा भोला या कभी कभी चालाक इंसान होता है जो समाज के हर तबके से गुजरता है और उनकी असलियत, उनका पाखंड हमारे सामने रखता है।
तो चलिए मिलते हैं अपने ऐसे ही एक नायक से।
कहानी हमें ले जाती है 17वीं सदी के आखिरी सालों में लंदन में। यहां हमारी मुलाकात होती है एबनीजर कुक से।
एक नौजवान जो खुद को बड़े गर्व से कवि और कुवारा कहता है।
हाँ, पोएट एंड वर्जन। वो आदर्शों में जीता है, किताबों में खोया रहता है और असल दुनिया की उसे कोई खबर ही नहीं है।
उसकी एक बहुत ही अजीब मानसिक स्थिति भी है जिसके लिए लेखक ने एक नया शब्द गढ़ा है, कॉस्मोप्सिस। इसका क्या मतलब है?
संभावनाओं के एहसास में लकवाग्रस्त हो जाना।
मतलब?
मतलब एबनेजर के सामने जीवन के इतने रास्ते हैं, वो कुछ भी बन सकता है, कुछ भी कर सकता है, और इसी उलझन में वो कुछ भी नहीं कर पाता।
विकल्पों की अधिकता ने उसे पंगु बना दिया है एक तरह से।
बिल्कुल, वो कोई भी फैसला लेने से घबराता है।
ये तो आज के जमाने की भी बहुत बड़ी समस्या लगती है। खैर, तो ये युवक जो कोई फैसला नहीं ले पा रहा, उसकी जिंदगी आगे कैसे बढ़ती है?
अचानक, जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, मैरीलैंड कॉलोनी के मालिक लॉर्ड बाल्टीमोर उसे एक बहुत बड़ा काम सौंप देते हैं।
क्या?
वे उसे मैरीलैंड का राजकवि नियुक्त कर देते हैं, पोएट लॉरिएट ऑफ मैरीलैंड।
ये तो अपने आप में एक मजाक जैसा है।
है ना?
एक ऐसा आदमी जो ये तय नहीं कर पा रहा कि सुबह क्या करे, उसे एक पूरे महाद्वीप की तारीफ में एक महाकाव्य मैरीलैंडयार्ड रचने का काम मिल गया।
जी, उसे हुम मिलता है कि वो अमेरिका जाए, अपनी पारिवारिक जमीन संभाले और उस नई शानदार दुनिया की शान में कविता लिखे।
और यहीं से उपन्यास के केंद्रीय संघर्ष की जमीन तैयार होती है।
हाँ, एक तरफ एबनेजर के मासूम किताबी आदर्श
और दूसरी तरफ औपनिवेशिक अमेरिका की कठोर, क्रूर और भ्रष्टाचार से सनी हुई हकीकत। तो मूल सवाल यही है, क्या भोलापन जिंदा रह सकता है?
चलिए एबनेजर के इस सफर को और करीब से देखते हैं।
तो एबनेजर की पूरी शख्सियत उसकी मासूमियत पर टिकी है
और उसकी कुंवारेपन पर। वो ये मानता है कि उसकी वर्जिनिटी ही उसकी कविता की शक्ति का स्रोत है, ये उसकी पवित्रता है जिसे वो बचाकर रखना चाहता है।
यानी उसने अपनी पहचान को एक बहुत ही नाजुक धागे से बांध रखा है और उपन्यास इसी धागे को तोड़ने का काम करता है।
एक एक करके उसके सारे भरम टूटते हैं और वो भी बहुत बुरी तरह से। कविता, प्रेम, सम्मान, नई दुनिया
सब बिखर जाता है।
और इस बदलाव को जो शख्स सबसे ज्यादा हवा देता है वो है हेनरी बर्लिंगहेम।
अगर एबेनेजर एक स्थिर पहचान का प्रतीक है तो उसका गुरु हेनरी बर्लिंगहेम ठीक उसका उल्टा है।
बिल्कुल, बर्लिंगहेम तो पहचान की तरलता का जीता जागता सबूत है।
वो एक बहुरूपिया है। उपन्यास में वो इतने रूप बदलता है कि पाठक भी चकरा जाता है।
हाँ, कभी वो एक विद्वान गुरु है तो कभी एक जासूस, कभी जहाज का कप्तान और यहां तक कि एक अमेरिकी आदिवासी कबीले का मुखिया भी बन जाता है।
गजब।
उसका दर्शन ही यही है कि एक चीज बने रहना एक कैदी होने जैसा है।
वो एबेनेजर का मार्गदर्शक भी है और उसे सबसे ज्यादा परेशान करने वाला भी।
वो उस असहज सच का प्रतीक है कि दुनिया में कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है।
जी,
और बाकी पात्र भी हैं, जैसे कि उसकी जुड़वा बहन एना कुक
जो उससे बिल्कुल विपरीत है।
व्यावहारिक है, दुनियादार है। उसकी कहानी अपने भाई की कहानी के समानांतर चलती है, लेकिन उसका अंत बहुत दुखद होता है।
और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है, जोन टोस्ट, लंदन की एक वेश्या,
जिसे एबेनेजर अपनी कल्पना में अपनी पवित्र देवी बना लेता है,
उसे दूर से देख कर ही, हाँ,
और अपनी कविता की प्रेरणा मान लेता है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसकी इस आदर्शवादी सोच का उस औरत की असली जिंदगी पर क्या भयानक असर पड़ेगा।
तो अब इन किरदारों के साथ एबेनेजर का सफर शुरू होता है। वो पोसाइडन नाम के जहाज पर सवार होकर निकलता है। ये सफर कैसा रहता है?
ये सफर मतलब आने वाली तबाही का एक छोटा सा ट्रेलर साबित होता है।
अच्छा,
जहाज पर समुद्री डाकू हमला कर देते हैं, भयानक तूफान आता है, जहाज का चालक दल ही विद्रोह कर देता है,
बाप रे।
और इस पूरी अफरातफरी में एबेनेजर अपना राजकवि होने का कमीशन खो देता है, उसका सारा सामान लूट जाता है और उसका नौकर भी गायब हो जाता है।
मतलब मैरीलैंड पहुंचने से पहले ही उसके पर कतर दिए जाते हैं, वो एक फकीर की तरह पहुंचता है।
बिल्कुल, और मैरीलैंड पहुंचते ही नया ईडन यानी एक नई जन्नत का उसका सपना शीशे की तरह टूटकर बिखर जाता है।
कैसे?
उसे पता चलता है कि उसकी पारिवारिक जागीर माल्डन, जिसे वो एक शानदार हवेली समझ रहा था,
वो असल में
एक बदनाम वैशाल्य और अफीम का अड्डा बन चुकी है।
ये तो उसके आदर्शों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। वो जिस जमीन की तारीफ में महाकाव्य लिखने आया था, वो तो पाप का गढ़ निकली।
और सिर्फ जमीन ही नहीं, पूरी कॉलोनी ही साजिशों का केंद्र है। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच विद्रोह की आग सुलग रही है।
और हमारा भोला भाला कवि एबेनेजर इन सब साजिशों के बीचों बीच फंस जाता है।
अनजाने में
तो उसकी कविता लिखने की जो महान खोज थी, उसका क्या हुआ?
वो खोज तो कब की पीछे छूट गई। अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद रह गया है, किसी तरह जिंदा रहना।
और ये समझना कि हो क्या रहा है।
हाँ, उसे कभी जासूस समझकर पकड़ लिया जाता है तो कभी अपराधी मानकर। उसकी पहचान लगातार बदलती रहती है, पर उसके अपने नियंत्रण के बिना।
और बर्लिंगेम, वो कहाँ है सब में?
बर्लिंगेम हर मोड़ पर किसी पहेली की तरह आता और जाता रहता है। एक बार तो एबेनेजर को आदिवासी पकड़ लेते हैं,
अच्छा,
और जब उसे उनके मुखिया के सामने पेश किया जाता है तो वो देखकर दंग रह जाता है कि वो मुखिया कोई और नहीं बल्कि भेष बदले हुए हेनरी बर्लिंगम है।
कमाल है। तो कहानी अपने चरमोत्कर्ष तक कैसे पहुंचती है? इतने सारे धागे, इतनी साजिशें, ये सब एक साथ कैसे आती हैं?
उपन्यास का चरमोत्कर्ष सभी रहस्यों से पर्दा उठाता है। हेनरी बर्लिंगम को आखिरकार अपनी जटिल वंशावली का पता चलता है,
जिससे वो नई दुनिया का एक जीता जागता प्रतीक बन जाता है।
जी, जिसमें यूरोपीय और अमेरिकी आदिवासी दोनों का खून है। उसकी पहचान की पहेली हल हो जाती है।
और एबेनेजर, उसकी पवित्रता, उसकी वर्जिनिटी, जिसका वो इतना दम भरता था, उसका क्या होता है?
वो एक बेहद अजीब, अस्पष्ट और भ्रम से भरी हुई स्थिति में अपनी वर्जिनिटी खो देता है।
ये कोई महान प्रेम का क्षण नहीं होता जैसा उसने सोचा था।
बिल्कुल नहीं, इस अनुभव से उसे कोई ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि और ज्यादा शर्मिंदगी और उलझन मिलती है। उसका आखिरी आदर्श भी टूटकर बिखर जाता है।
और फिर उसकी मुलाकात जोन टोस से होती है।
हाँ, और ये उपन्यास का शायद सबसे दिल दहला देने वाला क्षण है।
उसे जोन मिलती है, लेकिन वो बीमारी से पूरी तरह तबाह हो चुकी है, मरणासन्न हालत में।
तब एबेनेजर को एहसास होता है
कि उसके आदर्शवाद, उसकी निष्क्रियता ने इस औरत की बर्बादी में कितना बड़ा योगदान दिया है।
तो वो क्या करता है?
गहरे अपराध बोध और जिम्मेदारी के एक क्षण में वो उससे शादी कर लेता है। ये प्रेम का नहीं, बल्कि प्रायश्चित का काम था।
तो अंत में अपनी मासूमियत, अपनी जमीन, अपनी बहन, अपनी कविता का सपना, सब कुछ खोने के बाद एबेनेजर के पास क्या बचता है?
उसके पास आजादी बचती है। वो उस महान वीरतापूर्ण मैरीलैंड यार्ड लिखने का विचार हमेशा के लिए त्याग देता है।
उसे समझ आ जाता है कि मैरीलैंड की झूठी तारीफ करना सबसे बड़ा पाखंड होगा।
जी, तो क्या वो कवि बनना छोड़ देता है?
नहीं, बल्कि अब वो एक सच्चा कवि बनता है।
कैसे?
वो अपनी असली कृति की रचना करता है, एक कड़वी व्यंग्यात्मक कविता जिसका शीर्षक है द सॉल्टवीड फैक्टर।
सॉल्टवीड, जो एक पड़क आग घटिया तंबाकू होता है।
हाँ, और इस कविता में वो उसी कॉलोनी के लालच, पाखंड और क्रूरता की निंदा करता है जिसकी प्रशंसा करने के लिए उसे भेजा गया था।
ये तो कहानी का सबसे बड़ा व्यंग्य है।
बिल्कुल, अपनी भव्य खोज में पूरी तरह से असफल होकर, सब कुछ लुटाकर, वो अपनी सच्ची कलात्मक आवाज हासिल करता है।
उसे ये आवाज ऊंचे ऊंचे आदर्शों में नहीं,
बल्कि एक दोषपूर्ण, जटिल और क्रूर हकीकत को बिना किसी लाग लपेट के स्वीकार करने में मिलती है।
तो असल में ये कहानी एक बहुत ही असहज सच बताती है। हम सब एक शानदार महाकाव्य लिखने का सपना लेकर निकलते हैं, लेकिन सच्ची आवाज तब मिलती है जब हम उस सपने के टूटने को स्वीकार कर लेते हैं।
और शायद ये भी कि हमारी सबसे बड़ी असफलता ही अक्सर हमारी सबसे बड़ी जीत का रास्ता बनती है। जब हम वो बनने की जिद छोड़ देते हैं जो हम बनना चाहते हैं, तब हम वो बन पाते हैं जो हम असल में हैं।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।